ओम शांति। बाबा के साथ हम सभी बाबा के बच्चों का अटूट स्नेह, अटूट प्यार बाबा के साथ है ही है। जब अव्यक्त बाप दादा पूछते हैं कि आपको कितना स्नेह है बाबा से, कितना प्यार है बाबा से, तो उत्तर क्या आता है? आपको कितना है बाबा से प्यार? कितना है प्यार? बहुत, ढेर सारे, है ना? बहुत, जो गिनी नहीं जा सकती, है ना? मेजर नहीं कर सकते हैं, इतना बेहद बेहद प्यार है बाबा के साथ। और बाबा भी कहते हैं मैं तो प्यार का सागर हूं ही। तो हर बच्चे के साथ मेरा अटूट स्नेह है। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, हर बच्चे को एक समान में प्यार देता हूं और माला के लास्ट मणके को भी मैं इतना ही प्यार करता हूं। क्योंकि बाबा का प्यार अनकंडीशनल है, निस्वार्थ है। ये नहीं है कि आप अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं इसीलिए ज्यादा प्यार है, अच्छी सेवा कर रहे हैं इसीलिए प्यार है। नहीं, हर आत्मा के प्रति, चाहे आप श्रीमत पे थोड़ा बहुत चल रहे हैं या माला के लास्ट मणके भी हैं, उस आत्मा के साथ भी बाबा का अटूट स्नेह है। लेकिन अंतर कहाँ आता है? बाबा तो माता पिता है, वो कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि एक को ज्यादा प्यार दो दूसरे को कम प्यार दो। ऐसा तो पार्शियलिटी बाबा कभी नहीं करेंगे, है ना? तो हर एक आत्मा को इतना ही प्यार करते हैं। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर कहाँ आता है? लेने में, अनुभव करने में अंतर आ जाता है। क्योंकि देने वाला तो दे रहा है, देने की कमी नहीं है, लेकिन लेने वाले थक रहे हैं और लेने वाले ले भी रहे हैं लेकिन उसको खर्च भी बहुत जल्दी कर भी रहे हैं, ड्रेन आउट भी हो रहा है, वो वेस्ट भी हो रहा है ना, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसीलिए आज हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी तरह बाबा से प्यार हम कैसे ले, कैसे अनुभव करें। और प्यार अनुभव करने की जरूरत क्या है बाबा से? शक्ति अनुभव कर ले, ज्ञान अनुभव कर ले, दूसरे गुण अनुभव कर ले, लेकिन प्यार अनुभव करने से क्या होता है? क्या होता है? प्यार ही किया जाता है। अच्छा, क्योंकि बहुत बाबा के बच्चों का ये अनुभव रहा है, भले आप 7 डेज कोर्स शुरू भी नहीं किया होगा, बाबा के सेंटर पे आए होंगे तो वहां के वाइब्रेशंस और भाई बहनों का जो निस्वार्थ स्नेह, तो वो आकर्षित जरूर किया होगा आपको। फिर बाद में धीरे धीरे आप कोर्स लेने लगे, फिर ज्ञान समझने लगे और फिर उसकी गहराई में जाने लगे। लेकिन सबसे पहली जो चीज था जो सभी को आकर्षित, मेजॉरिटी लोगों को जो आकर्षित किया होगा, वो है रूहानी स्नेह। परिवार में भी वो रूहानी स्नेह कहां से आया? कि बाबा ने दिया तभी तो ना। बाबा का जो स्नेह है हर आत्मा में वो भरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने वो अनुभव, बाबा का जो स्नेह है हर आत्मा के द्वारा उन्होंने अनुभव किया है। और दूसरी बात यह है कि प्यार इसीलिए भी अनुभव करना है क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो दुख है, द्वापर युग से जो हम दुख की अनुभूति करते आए हैं, कुछ न कुछ संस्कार में वो लेके आए हैं अगले जन्म में। क्योंकि जब शरीर छोड़ रहे होंगे तो कुछ न कुछ दुख मन में लेकर के शरीर छोड़ रहे हैं, वही दुख फिर अगले जन्म में ले आते गए हैं। और कोई ना कोई जन्म में किसी ना किसी से दुख जरूर अनुभव किया है, कोई ना कोई संबंधों से दुख, केवल छोटे मोटे दुख नहीं लेकिन बहुत ही गहराई से वो दुख अनुभव किया हुआ है। इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का जो दुख है गहराई से, वो दुख आत्मा के अंदर इतना डीपली गहराई से है, उसको हम कैसे हील कर सकते हैं? केवल बाबा के प्यार के आधार से ही उसको हम हील कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आत्मा कोई भी जन्म में कोई मेरे पिता के साथ मेरा बहुत लड़ाई हुआ है या फिर अनबन हो गया है या कुछ ऐसा दुख मैंने प्राप्त किया है उस जन्म के पिता से, तो वो फिर वो मैं आत्मा लेके जाती हूँ नेक्स्ट जन्म में, फिर पिता को इस जन्म के जो पिता है तो वो उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पिछले जन्म के पिता के साथ प्रॉब्लम था, तो उसी दृष्टिकोण से मैं इस जन्म के उस संबंध के साथ में व्यवहार करना शुरू करूंगी तो फिर वहां समस्या शुरू होता है। तो इस जन्म में हम सभी आत्माओं ने बहुत सारे पुराने जन्म लिया है ना, 84 मैक्सिमम लोगों ने 84 जन्म लिया है कि नहीं लिया है? 84 जन्म लिया है आप सभी ने? 84 जन्म लिया है पूरी तरह है ना। हम सभी आदि में आने वाले, आदि में आने वाले कि नहीं आने वाले? जो सतयुग के आदि में आने वाले हैं वो पूरी तरह 84 जन्म लेंगे है ना। और सबसे पुराने इस धरती पर वही आत्माएं हैं जो लंबे काल से इस धरती पर चोला बदल बदल करके, शरीर बदल बदल करके अपना पाठ बजा रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जन्म हमने लिया है तो ज्यादा से ज्यादा पाप कर्म भी हमने किया है। ये बात मानेंगे? मानेंगे हाँ। पुण्य कर्म भी हमने ज्यादा किया है लेकिन पाप कर्म भी हमने ज्यादा किया है, क्योंकि द्वापर युग से लेकर के थोड़ा हर जन्म में थोड़ा 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 करते 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 इतना सारा पाप कर्म हमारे खाते में जमा हो गया है ना। तो अभी जो आत्माएं आती हैं कलयुग में, दो जन्म, तीन जन्म, पांच जन्म, 10 जन्म जो आत्माएं जन्म ले रही हैं, उनमें ज्यादा पाप कर्म नहीं है क्योंकि ज्यादा उन्होंने कर्म किया ही नहीं है, ज्यादा जन्म लिया ही नहीं, थोड़ा बहुत उन्होंने किया है करते आए तो हुआ है। तो अभी अगर उन सभी बातों को हील करना है, भस्म करना है, तो फिर बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि संबंधों के बिना उसको हम साफ नहीं कर सकते। क्यों? संबंधों के बिना उसको हम साफ क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जहां संबंध है वहां भावनाएं जुड़ी हुई है, संबंधों के बिना भावनाएं हमारी जुड़ती नहीं है। अगर कोई रास्ते पर जा रहे हैं, आंखों के सामने दो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं देख रही हूं फुटपाथ पर खड़े होकर के दो लोगों का एक्सीडेंट हो गया, रहम आता है तो फिर जाकर के थोड़ा बहुत मदद कर लिया, अनजान लोग हैं, मैं जानती नहीं हूं उन लोगों को, थोड़ा बहुत मदद कर लिया, फिर उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, भूल भी गए। लेकिन थोड़े दिनों के बाद अगर मेरे निकट जो कोई संबंधी है, परिवार के सदस्य है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर ना केवल मैं उनके प्रति कंसर्न दिखाऊंगी लेकिन दुखी भी हो जाऊंगी, और फिर हॉस्पिटल भी जाऊंगी, और जब तक ठीक ना हो तब तक मैं हॉस्पिटल जाती रहूंगी उसके पास। क्यों, यह अंतर क्यों है? पहले इंसिडेंट में जो हुआ करके फ्री हो गए, लेकिन दूसरी बात जब कोई सगे संबंधियों का हुआ, मैं ज्यादा अपना टाइम और एनर्जी उसके प्रति दिया। क्यों दिया, क्यों दिया? संबंध, जहां संबंध है वहां भावनाएं जुड़ी हुई है, संबंध नहीं तो भावनाएं जुड़ती नहीं है, है ना? ऐसे ही बाबा के साथ अगर प्यार की अनुभूति करना है, वो भी ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से प्यार की अनुभूति करनी है, तो फिर बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। केवल अगर ये सोचे कि बाबा तो सर्वशक्तिमान है, वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, मैं भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान, गुण और शक्तियों के आधार से केवल मैं याद करने बैठूं, तो कितना हम कर सकते हैं, कितना लंबा समय कर सकते हैं? जहां भावनाएं नहीं है, केवल हम शक्तियों की अनुभूति, गुणों की अनुभूति कर रहे हैं, वहां रुका सुकापन है, है ना? वही ये इस जगह पर अब मैं सोचूं, मैं सर्वशक्तिमान पिता के संतान हूं। जब संबंध, वो पिता और संतान का संबंध जोड़ती हूं, या फिर दूसरे भी संबंध जोड़ती हूं, तो वहां वो गहराई है, वहां प्यार है, शक्ति के साथ साथ वहां प्यार भी है, तो फिर हम लंबे समय तक बाबा को याद कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा को अपना संसार बनाओ। संसार माना, आपका संसार क्या है? पहले बाबा के पास आने से पहले आपका संसार क्या था? आपका संसार क्या था? जो भी सगे संबंधी हैं, है ना, हमारा संसार माना जिनको हम याद करते हैं, जिन लोगों को हम याद करते हैं या वस्तुओं को याद करते हैं, वही हमारा संसार बन जाता है। संसार यहां हमारा संसार है ना, यहां हमारा संसार है, जिनको भी हम याद करते जाएंगे वही हमारा संसार है, चाहे वस्तु है चाहे वो व्यक्ति है, है ना? तो जितना ज्यादा हम याद करते जाएं, उतना निकट, उतना नजदीक का संबंध उनको हम अनुभव करते हैं। ये जरूरी नहीं है कितना घंटा आप उनके साथ रहते हैं, ये जरूरी नहीं है। भले 2400 घंटा उस व्यक्ति के साथ रहेंगे, लेकिन प्यार नहीं है वो, फिर मेरे संसार में वो व्यक्ति नहीं है, है ना? वो फिजिकल जो निकटता नजदीकता वो मायना कोई नहीं रखता, जिनको हम याद करते हैं वो मायना, भले वो कितने भी किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन बार बार मैं उस व्यक्ति को याद कर रही हूं, वो मेरे दिल के करीब है ना? तो जो व्यक्ति, जो संसार, जो परिवार वाले हैं या जिनको हम प्यार करते थे, वही हमारा संसार है। तो अभी जब बाबा कहते हैं कि मुझे अपना संसार बना लो, तो फिर क्या करना है? उन लोगों को जिनको हम बहुत प्यार करते थे, उनको अभी बाबा के साथ रिप्लेस करना है। समझ में आया? उनकी जगह पर बाबा को ले आने की जरूरत है, क्योंकि हमें यह आदत है अनेकों लोगों के साथ संबंध जोड़ने की। बचपन से जब बच्चा पैदा होता है, मां के साथ संबंध जुड़ता है, फिर धीरे धीरे पिता के साथ संबंध जुड़ता है, और धीरे धीरे फिर भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ संबंध जुड़ता है, फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बनते हैं, फिर वो उनको उसका परिवार बढ़ता है। तो ऐसे धीरे धीरे उसके जो लोग, उनके जीवन में जो अलग अलग लोग हैं, वो आते हैं और उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। अगर वो बच्चा पैदा होता है, माँ केवल माँ है, पिता नहीं है, माँ भले कितना भी प्यार से, बहुत ही प्यार से उस बच्चे की देखभाल किया है, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के दिल में ये जरूर रहेगा, काश मेरे पापा होते। ये फीलिंग आती है ना बच्चे को, काश मेरे एक पापा होते। क्यों? मम्मी जो प्यार कर रही है, जितना परवरिश दे रही है, उसको वो पर्याप्त नहीं है उस आत्मा को, क्योंकि हर व्यक्ति के प्यार का जो फ्लेवर है वो अलग अलग है। भले माँ कितना भी प्यार करे, लेकिन माँ का प्यार और पिता का प्यार अलग अलग है, है ना? है कि नहीं? सही बात है। और माता पिता हो एक ही बच्चा हो, और उस बच्चे के दिल में काश मेरे एक बहन या भाई होता, है ना? क्यों वो फीलिंग आता है? क्योंकि बहन और भाई का प्यार भी, उसका फ्लेवर भी अलग है, जो माता पिता नहीं दे सकते हैं। दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, फिर फ्रेंड्स का प्यार, फिर हर संबंधों की आवश्यकता है उस बच्चे को बढ़ने के लिए, एक इमोशनली स्टेबल होने के लिए, भावनात्मक स्थिरता लाने के लिए उस बच्चे के अंदर। कहते हैं 18 साल तक उस बच्चे को हर संबंध का प्यार मिलना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो फिर बच्चा भावनात्मक स्थिरता उसके अंदर आएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर आएगा, फिर वो अच्छा नागरिक माना जाएगा, क्योंकि कोई भी क्राइम, कोई भी ऐसा व्यवहार वो नहीं कर सकता। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो रहा है? सभी हैं परिवार में, माता पिता भी है, भाई बहने भी है, दादा दादी है, नाना नानी है, फ्रेंड्स है, ऑनलाइन फ्रेंड्स है, फेसबुक फ्रेंड्स है, एक दो फ्रेंड्स नहीं है, हजारों फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स। इतना सब कुछ होते हुए भी अकेलापन नहीं, सभी होते हुए भी अकेलापन क्यों है? अकेलापन क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के साथ हम समय नहीं बिता रहे हैं। परिवार में है तो सही, लेकिन हर एक अपने अपने कमरे में, हर एक अपने अपने मोबाइल में, हर एक अपने अपने काम में बिजी है। जो पहले जमाने में, जब हम छोटे थे, जब एक साथ भोजन करते थे, एक साथ त्योहार मनाते थे, उस समय मोबाइल नहीं होता था, उस समय टीवी नहीं होता था, तो इसलिए परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते थे, उसके कारण से वो बॉन्ड बन जाता था, संबंध बन जाता था परिवार वालों के साथ, तो फिर वो भावनात्मक स्थिरता वो होता था। लेकिन अभी वो होने ना होने के कारण से, परिवार के साथ उतना गहराई से संबंध ना होने के कारण, आत्माओं में सेंसिटिविटी बहुत बढ़ता जा रहा है, कोमलता। तो छोटी छोटी बातों में सुसाइड के बारे में सोचते हैं, छोटी छोटी बातों में कुछ बहुत ही बहुत कुछ ज्यादा सोचने लगते हैं, थोड़ा बहुत डांट लगा दिया सुसाइड तक सोचना शुरू करते हैं, है ना। सेंसिटिविटी बढ़ता जा रहा है सभी में, है ना। तो उसका निवारण क्या है? अभी हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार मिले लोगों से, मुझे अपने माँ बाप से प्यार मिले, मुझे भाई बहनों से प्यार मिले, उस व्यक्ति से प्यार मिले, एक्सपेक्ट करने का अभी समय नहीं है, क्योंकि उन आत्माओं को भी प्यार चाहिए, वो भी खाली है, है ना। जिनके पास खजाना है ही नहीं, वो क्या देंगे हमें, क्या देंगे? उनको ही प्यार की आवश्यकता है, वो हमें प्यार दे नहीं सकते। हम भी खाली, वो भी खाली, तो फिर जब मिलेंगे तो खालीपन ही होगा, है ना। चांद देखा है ना, सत्युग में हमारा प्यार, हर आत्मा संपूर्ण है, हर आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण है, है ना। हर आत्मा संपूर्ण है, वहां सत्युग में एक संपूर्ण व्यक्ति दूसरे संपूर्ण व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ नहीं है उस व्यक्ति से, क्योंकि मैं खुद संपूर्ण हूं। चाहने के हिसाब से मैं व्यवहार नहीं कर रही हूं, मुझे कुछ चाहिए उस व्यक्ति से, उसके कारण से मैं उससे बात नहीं कर रही हूं, लेकिन केवल व्यवहार, वो प्यार, निस्वार्थ स्नेह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं, है ना। तो सतयुग में संपूर्ण आत्मा के साथ संबंध जब जोड़ती है, तो वहां स्वार्थ नहीं है, कुछ चाहने की इच्छा नहीं है, कुछ लेने की इच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही त्रेता युग में आते हैं, दो कलाएं कम होती है, तो जैसे चांद में पूनम के बाद दो चार दिन के बाद क्या होता है, थोड़ा सा कमी आ जाती है, तो उतना सा खालीपन है, तो उसको भरने के लिए हम एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ना शुरू करते हैं। वह जल्दी भर जाता है, क्योंकि खालीपन थोड़ा है, 2% है, तो एक व्यक्ति से संबंध जोड़ लिया तो वो भर गया, बहुत जल्दी भर जाता है। धीरे धीरे द्वापर युग में आए और खालीपन आ गया, आधे से भी ज्यादा खालीपन है, तो वो भरना है मुझे, है ना। तो संबंध क्यों जोड़ते हैं हम, वो जो खालीपन है उसको भर करके मैं संपूर्ण बन जाऊं, संपूर्ण हो जाऊं, तो इस कारण से हम संबंध जोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन वहां आधे से भी ज्यादा खालीपन है, तो वो भी आधे से ज्यादा खाली है, तो थोड़ा बहुत एनर्जी एक्सचेंज हुआ, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, संबंधों में किटपिट, अनबन, सब कुछ चलता आया है। और कलयुग के अंत में, धीरे धीरे कलयुग के अंत में हमारी स्थिति क्या हो जाती है, जैसे अमवास के पहले ईद का चांद देखा है सबने, ईद का चांद क्या कैसा होता है, एक लाइन होता है और 95% पूरा खाली है, है ना, एक लाइन है बस, उतनी ताकत आत्मा के अंदर भरी बची हुई है और 95-98% खाली है। अभी मैं वो 98% उसको भरना है मुझे। अभी मैं कोशिश करती हूँ इस व्यक्ति के साथ मैं संबंध जोड़ू, शायद इस व्यक्ति के साथ, तो वो भरने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बेचारा वो भी, उसके पास भी 5% है, तो वो भी मुझे ज्यादा दे नहीं सक रहे हैं, है ना। तो अभी सभी का हाल ऐसा है, खालीपन बड़ा हुआ है। तो अभी मुझ आत्मा को अभी भरना है, तो कहां से भरेंगे? अभी कहां से भरेंगे? सागर से ही। सागर से ही हमारी प्यास बुझेगी। किसी आत्मा के प्यार से हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा प्यास बहुत ज्यादा है ना, चाहिए अभी जितना। अगर बहुत प्यास लगी है, अगर कोई पानी देता है एक ग्लास पिएंगे तो नहीं, और चाहिए और चाहिए, जब तक वो संतुष्टि ना हो एक दो लीटर पी लेते हैं ना। तो इतना प्यास अभी आत्मा के अंदर है, तो अभी वो प्यास बाबा से ही बुझेगी अभी। तो इसीलिए बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना इसीलिए जरूरी है। और दूसरा भी कारण ये है कि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ये कहा है, सर्व संबंधों में से केवल एक दो संबंध अनुभव किया, दो चार छोड़ दिया, उससे क्या होगा कि वही संबंध निमित्त बन सकता है आपको बाबा से दूर ले जाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं बाबा के साथ बच्चे का संबंध नहीं जोड़ रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो संबंध की जरूरत नहीं है। ठीक है, माता पिता बंधु सखा सब संबंध मैंने जोड़ लिया, बच्चे का संबंध छोड़ देती हूं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में शायद वही संबंध मुझे बाबा से दूर कर देता है कि इच्छा जागृत, मेरा बच्चा होता तो अच्छा है। चलो कुछ ऐसा नहीं है कि शादी करके एक बच्चा कर लेते हैं, फिर बाद में बाबा के बच्चे बन करके रहेंगे। क्यों वो इच्छा जागृत हो रही है, मेरा एक बच्चा चाहिए, क्यों वो? क्योंकि बाबा के साथ वो संबंध मैंने जोड़ा नहीं है। और अगर बाबा के साथ मैं स्वामी का संबंध नहीं जोड़ती हूं तो क्या होगा? प्रियतम का संबंध, साजन सजनी का संबंध में नहीं जोड़ती हूं, शायद वही संबंध वो ले जा करके, क्योंकि मैं वो प्यार इंसानों में मैं ढूंढती हूं कि मुझे साजन का प्यार चाहिए, बाबा को मैंने साजन बनाया नहीं है, तो फिर इंसानों में मैं ढूंढना शुरू करती हूं, वही प्यार बाबा से दूर लेके जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों की अनुभूति मेरे साथ करो, मुझे अपना संसार बना लो। मुख्यतः बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन मुख्यतः सात संबंध हैं जो हम बाबा के साथ जोड़ते हैं। मेन तो है ही है पिता, टीचर, सदगुरु। तो एक एक संबंध से क्या मिलता है और एक एक संबंध हम कैसे अनुभव करें, हम देखते चलते हैं, है ना? सबसे पहला संबंध जो हर मुरली में बाबा कहते हैं, बाबा हमारा पिता है, बाप है। इसीलिए मुरली के स्टार्टिंग में मीठे मीठे बच्चे, है ना, बच्चे के रूप में हमें देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला संबंध जो हमारा जुड़ता है बाबा के साथ वो है पिता और संतान का संबंध, है ना। बाबा को जब हम पिता बनाते हैं, पिता मानना शुरू करते हैं, तो क्या होगा? जब तक हम बाबा को पिता नहीं मानेंगे तब तक हमें वर्षा नहीं मिल सकता, अधिकार नहीं मिल सकता, वर्षा नहीं मिल सकता, है ना। तो बाबा को पिता मानने से वर्षा कौन सा मिलता है? वर्षा कौन सा मिलता है? कौन सा वर्षा मिलता है? वो तो भविष्य में, अभी इस शरीर में रहते हुए हमें वर्षा कौन सा मिलता है? बाबा के पास जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो किसका है? बाबा के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो किसका है? हाँ, वो नशा है, वो नशा है कि मेरा पिता जो है वो इतना साहूकार है, है ना। मेरे पिता के पास इतना प्रॉपर्टी है, कौन से प्रॉपर्टी है? सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, ज्ञान का भंडार, ये सभी बाबा के पास अखुट है। वो खुटने वाला नहीं है, जितना भी हम लेते जाएंगे वो कम नहीं होने वाला है। होता है कम, बाबा के प्रॉपर्टी कभी कम नहीं होता। तो इतना अथाह वर्षा हमें मिलता जा रहा है, जितना हम ले सके लेते ही जाना है। बाबा तो अपना खजाना खोल के बैठे हुए हैं, उस पर कोई ताला चाबी है ही नहीं। जब भी जाकर के लेना चाहे, जितना लेना चाहे वो हम ले सकते हैं। ताला चाबी में सेफ इसमें रखा नहीं है बाबा ने, है ना। तो और उसके साथ साथ पिता के संबंध जोड़ने से बाबा से शक्ति मिलती है, है ना। आत्मा के साथ गुण है, आत्मा को सतोगुणी कहते हैं। आत्मा ओरिजिनली निजी रूप में आत्मा के अंदर सात गुण हैं, है ना। तो उसमें से एक एक संबंध से एक एक गुण हमें प्राप्त होना शुरू होता है। तो सबसे पहले पिता के संबंध से हमें शक्ति मिलती है, क्योंकि पिता के कारण से हमें समाज में रिकग्निशन मिलता है, पहचान मिलती है, किसका बच्चा है ये, फलाने मेरा बाप ये है। और जब भी अगर मेरा बाप कोई बड़ा है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन है या कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है, माने जाने माने व्यक्ति है शहर के, और मैं सीना ठान के जा सकती हूँ और पता है मेरा बाप कौन है, है ना। वो इतना नशा रहता है कि मैं, मेरा बाप कौन है, है ना। शक्ति महसूस होता है वो पिता के संबंध से, छत्र छाया, है ना। पिता के छत्र छाया मेरे सिर पर है, तो वो सर्वशक्तिमान पिता जो बाबा है, शिव बाबा है, वो मेरा पिता है, उसका जो छत्र छाया है वो हमेशा मुझ आत्मा के ऊपर हमेशा है, वो महसूस करना है। कभी इसमें डाउट नहीं लाना है, संशय नहीं लाना है कि क्या बाबा हमेशा मेरा साथ है, मेरा साथी है, कभी भी ये डाउट नहीं लाना है। क्योंकि बाबा ने वायदा किया है कि अंतिम समय तक मैं आपके साथ हूं, केवल मुझे याद करना है, याद करते ही बाबा मेरे साथ वो है ही है, वो हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए पिता के साथ के अनुभव से शक्ति की अनुभूति हम करते हैं। जब भी डर लगता है, जब भी अनिश्चितता होती है, तो फिर ये महसूस करना है कि हजारों हजारों भुजाओं सहित बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है। तब ये अनुभव करेंगे, वो अंदर से डर भाग जाएगा, है ना। शक्ति की अनुभूति हम कर सकते हैं। और दूसरा संबंध है माँ का संबंध, बहुत प्यारा संबंध है माँ का, माँ के साथ। माँ से क्या मिलता है? प्यार मिलता है। और क्या मिलता है? प्यार और क्या मिलता है? प्यार, पालना मिलती है और संस्कार मिलते हैं, भाग्य मिलता है। अच्छा बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है ना। मां से मुख्यतः निस्वार्थ स्नेह मिलता है ना। मां का स्नेह जो है वो निस्वार्थ है, जो शांति देता है, निश्चिंतता। कि अगर घर में मम्मी है तो बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं ना, निश्चिंत हो जाते हैं। छोटा बच्चा अगर रो रहा है, माँ की गोदी में गया, वो निश्चिंत हो गया और आराम से सो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मम्मी है मेरी देखभाल करने के लिए, तो इसलिए निश्चिंत हो जाता है। शांति की अनुभूति, निश्चिंतता से हमें शांति की अनुभूति। शांति अगर हम अनुभव करना है, निश्चिंतता की जरूरी है। चिंताएं जब खत्म होगी तब हम शांति की अनुभूति कर। चिंताएं भी और शांति की अनुभूति वो भी हो सकता है, साथ साथ होगा नहीं, है ना। चिंताओं से मुक्त होंगे तब हम शांति की अनुभूति होंगे, अनुभूति करेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा को जब हम माँ के रूप में देखते हैं, माँ के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो एक प्रकार से निश्चिंतता है कि वो बाबा है ना, मेरी माँ है ना, मेरे देख जो भी समस्या है समाधान करने के लिए मेरी माँ, बाबा शिव बाबा मेरी माँ बैठे हुए हैं, तो वो अनुभव करे। जो भी समस्या, जब भी कोई चिंता है, जो भी समस्या है, तो बाबा को दे देना है। दे देना का मतलब ये नहीं कि बाबा ये मेरी समस्या है आप कर लो जो करना है, एक होगा बाबा बैठ करके सॉल्व करेंगे उस समस्या का, समाधान करेंगे बाबा, कैसे करेंगे बाबा समाधान उसका? क्योंकि मेरे जीवन में वो समस्या क्यों आई है? बाबा के कारण से आई है, मेरे कारण से आई है? खुद के कारण से वो समस्या आई है, क्योंकि मेरा कर्मों का हिसाब किताब है, मेरा ही पूर्व जन्मों का कर्म है जो मैं वो समस्या मेरे जीवन में आया हुआ है। और ये बाबा को कहूं कि बाबा ये समस्या आप ले लो, ले लेंगे बाबा वो समस्या? बाबा वो समस्या क्यों पालेंगे? वो समस्या तो मेरी है ना। तो दे देने का मतलब ये है कि बाबा को प्यार से जब हम याद करते हैं और ये कहते हैं बाबा ये समस्या है और इसका समाधान क्या है आप बताओ। हाँ, लेकिन उस रीति से अर्पण करना पड़ेगा बाबा को, बाबा ये समस्या है, इस परिस्थिति में मुझे करना क्या है। बाबा से बात करते हैं तो बाबा मुझे उसका समाधान देंगे, और जो समाधान देंगे उसके अनुसार मुझे करना होगा, तब वो समस्या समाधान हो जाएगा। और बाबा जो कह रहे हैं उसके अनुसार मैं करूंगी नहीं, समाधान भी नहीं होगा, है ना। तो इस रूप से बाबा हर समस्या का समाधान में बाबा जरूर देंगे, बाबा मेरा साथी है। बाबा बैठ करके उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वो जैसे छू मंत्र हो जाए, कोई समस्या आए बाबा आप ले लो, बाबा ने छू मंत्र कर लिया, वो समस्या चली गई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ये विधि से सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि नहीं है, है ना। तो बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसको जब मैं फॉलो करना शुरू करती हूँ तो धीरे 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 उस समस्या गायब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए प्यार से जब बाबा को याद करते हैं माँ के रूप में, हर समस्या का समाधान बाबा के पास है, और वो गुस्से से नहीं, प्यार से देंगे, है ना, निस्वार्थ भावना से देते चलते हैं और उनके मार्ग पर हमें चलने की जरूरत है। और तीसरा संबंध है बाबा के साथ टीचर का संबंध, है ना। टीचर से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। और वो स्थूल जो लौकिक टीचर है उनके द्वारा तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई, उसका ज्ञान मिलता है, लेकिन जो परम टीचर है परमात्मा शिव बाबा, उनसे बेहद का ज्ञान मिलता है जो कोई इंसान के पास नहीं है, वो ज्ञान का सागर है। तो ऐसे गुह्य गुह्य बातें हमें समझने के लिए मिलता है बाबा से, है ना। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, बहुत सारा अथाह ज्ञान बाबा से मिलता है। और ज्ञान रोशनी है, है ना, अंधकार को मिटाने वाली ज्ञान रोशनी है। बाबा से वो ज्ञान मिलता है इस जन्म के और अनेकों जन्मों के जो अंधकार है उसको मिटा देता है, और ज्ञान के आधार से ही शक्तियां भी प्राप्त होती। समझ ही नहीं है तो सबसे पहली बात है समझ, है ना। ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसको धारण भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए जितने गहराई से एक एक बात को मैं समझती जाऊंगी, और एक एक ज्ञान रतन कहा जाता है बाबा का, एक एक ज्ञान का जो ज्ञान की बातें हैं वो लाखों रुपयों के बराबर है, है ना। तो इनको, इन चीज, इन ज्ञान के रत्नों को जब मैं धारण करना शुरू करती हूँ तो आत्मा बहुत ही मूल्यवान बनती जाएगी। और ये सब कुछ ज्ञान हमें बहुत फ्री मिल रहा है, पूरी तरह फ्री मिल रहा है, लेकिन बाहर दुनिया में एक ऐसे महान स्पीकर के कोई भी ऐसे टॉक में जाने के लिए हजारों रुपयों का फीस देना पड़ता है, है ना। लेकिन यहां तो रोज बाबा फ्री ज्ञान बांट रहे हैं, हम कितना खुश नसीब है, कितना भाग्यवान है। हम उस जितना चाहे उतना हम पढ़ सकते हैं, हमारा लिटरेचर भी इतने, मतलब बहुत सब कुछ इतना फ्री मिल रहा है, बहुत ही सस्ते दाम में सब कुछ इतना ये मिल रहा है। तो हमें उस भाग्य का कदर हमें होना चाहिए, और जितना हम उस ज्ञान को ग्रहण करते जाए आत्मा के लिए उतनी अच्छी बात है। और ये यूनिवर्सिटी भी है, है ना, ये कोई सत्संग नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी है जहां हम स्टूडेंट्स हैं, हम आकर के रोज पढ़ाई करते हैं। तो उस रीति से उस संबंध, बाबा हमारा शिक्षक है, परम शिक्षक है, लेकिन मैं आत्मा स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर वो अगर क्वालिटी है तो टीचर के फेवरेट बन जाएंगे, है ना। अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, हर बच्चा टीचर का फेवरेट नहीं होता। कौन सा बच्चा फेवरेट होता है? जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ता है, रेगुलर होता है, ओबीडियंट होता है, तो वो बच्चा टीचर का फेवरेट होता है। ऐसे ही मुझे अगर बाबा के फेवरेट बनना है तो फिर अच्छी स्टूडेंट बन करके मुझे पढ़ाई करनी होगी, है ना। और चौथा संबंध सदगुरु। मुझे लगता है कि एक ही व्यक्ति आंसर दे रहे हैं, बताओ कोई और भी उत्तर देने दीजिए। तो चौथा संबंध है सदगुरु का संबंध, है ना। तो सदगुरु से क्या मिलता है? एक मिनट रुकिए, दूसरों को जवाब देने दीजिए। सद्गुरु से क्या मिलता है? गति सदगति मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलता है, है ना। और जब लौकिक दुनिया में गुरु के पास गुरु का जप करते हैं तो मार्गदर्शन मिलता है, यहां बाबा से हमें श्रीमत मिलती है, है ना। जितना हम सदगुरु बाबा के श्रीमत के अनुसार चलते जाएंगे उतना वरदान मिलता जाएगा, है ना। वरदान भी हर एक को नहीं मिलेगा, जितना हम श्रीमत पे चलेंगे उतना वरदान मिलेगा। वरदान के हकदार भी होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि हम श्रीमत फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, बाबा वरदान दे रहे हैं सबको। वैसे तो बाबा सबको देंगे, लेकिन हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे वो वरदान वरदान नहीं बनेगा मेरे लिए, है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब वरदान होता है तो मेहनत नहीं है, वरदान ऐसी चीज है जो तथास्तु, जैसे वरदान कर दे दिया तो वो बहुत ही सहज हो जाता है ना। इसीलिए बाबा हमारा सदगुरु है, मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति तब मिलेगा हर कदम पर हम बाबा के श्रीमत को फॉलो करते हुए बाबा के वरदानों की अनुभूति करते चले तो ये जीवन बहुत सहज हो जाएगा। नहीं तो फिर बहुत भारीपन होगा, अरे बाप रे कितने साल पड़ा है अभी। कोई कोई ब्राह्मणों से मुख से ये सुनने को मिलता है, दीदी कब विनाश होने वाला है, थक गए अभी बस। कोई ऐसा कहते हैं अभी, बहुत पुराने जो ब्राह्मण है ना, कहते हैं मैं थक गए अभी बस, बाबा कब विनाश करने वाला है, विनाश कब होगा। तो ये थकावट क्यों है, थकावट क्यों है, खुश नहीं है ब्राह्मण बन के, बाबा की गोदी में खुश नहीं है आप। ब्राह्मण जीवन से खुश तो इस बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं इस जीवन से। सत्युग में बाबा नहीं होंगे, है ना। सत्युग में भले सब प्रकार के सुख होंगे लेकिन बाबा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए इस जन्म में जो हमें आनंद की अनुभूति करनी है, बाबा है, बाबा के साथ का अनुभव, इतना अतीन्द्रिय सुख अब अनुभव करते जाए तो वो दुख दुख ना लगे, है ना। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता यही है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन कहां ना कहां श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है तो वहां माया बिल्ली आ जाएगी, है ना। रावण आ जाएगा, सीता ने लक्ष्मण रेखा पार किया, रावण उड़ा के ले गया, है ना। कहां ना कहां हमारा श्रीमत उल्लंघन होता है, रावण लेके चला जाएगा हमको, है ना। तो इसीलिए जितना हम श्रीमत के अनुसार चलते रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और अतीन्द्र सुख की अनुभूति करते रहेंगे और वो भारीपन नहीं होगा, बाप रे अभी ये भी करना है वो भी करना है, बाबा की याद में इतना आनंद की अनुभूति करते रहेंगे अंतिम श्वास तक हम बाबा की गोद में वो आनंद की अनुभूति करें, है ना। और नेक्स्ट संबंध है सखा का संबंध, बाबा के साथ फ्रेंड, बाबा मेरा फ्रेंड है, है ना। आपका भी फ्रेंड है बाबा, बाबा फ्रेंड है आपके, हाँ, है ना। अभी जो चार संबंध हमने अनुभव किया, मात पिता टीचर और सदगुरु, वो उन चारों संबंध में केवल लेने की बात होती है, क्योंकि पिता भी बड़े हैं, माँ भी बड़े हैं, टीचर भी बड़े हैं, सदगुरु भी बड़े, वो यहाँ ऊपर है मैं नीचे हूं, तो इन चारों ही संबंधों से मैं ले रही हूं, है ना। और सदगुरु से, हाँ सदगुरु से कौन सा गुण मिलेगा, टीचर से तो ज्ञान मिला, और फिर सद्गुरु से कौन सा गुण मिलता है? पवित्रता। पवित्रता की शक्ति मिलती है श्रीमत के अनुसार चलते हुए। गुरु से क्या मिलता है? पवित्रता की शक्ति ना, पवित्रता सद्गुरु से। और अभी सखा का संबंध ऐसा है जो लेन देन का संबंध होता है ना। फ्रेंड, अगर एक फ्रेंड बड़ा और एक छोटा, और फ्रेंड्स में क्या ढूंढते? एक जैसे, एक वेवलेंथ होता है ना, सोच एक जैसा हो, एक दूसरे को समझने की क्षमता हो, एक जैसे सोचने वाले हो, या फिर एक इंटरेस्ट वाले हो, एक ही प्रकार के इंटरेस्ट वाले हो, तो ऐसे फ्रेंड्स को हम ढूंढते हैं। वो फ्रेंडशिप फिर लंबा चलता है ना। एक दूसरे को समझते हैं, है ना। यह लेन देन दोनों है। यहां केवल हम ले रहे हैं फ्रेंड से, कुछ दे नहीं रहे हैं, तो वो फ्रेंडशिप टिकेगा? और फ्रेंडशिप टिकेगा नहीं टिकेगा। यहां दोनों है, लेन देन। जितना हम देते जाएंगे उतना मिलता जाएगा। बाबा को भी जब हम फ्रेंड बनाते हैं तो फ्रेंड से सबसे पहला गुण कौन सा है जो मिलता है फ्रेंड से? सहयोग है। और कौन सी बात है? सुख है। नहीं, फ्रेंड्स के साथ खुशी मनाते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ खुशी मिलती है। तो ऐसे बाबा के साथ जब हम फ्रेंडशिप करते हैं, वो खुशी, जो बातें हम फ्रेंड्स को बोल सकते हैं दूसरों को हम नहीं बोल सकते हैं। माता पिता को भी हम बोल नहीं सकते, दिल की बात है, सब कुछ हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। बाबा जब मेरा फ्रेंड है, दिल की सब बातें बाबा के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, दिल को हल्का, लाइट कर सकती हूँ, क्योंकि बाबा मेरे जो सीक्रेट्स हैं, मेरी जो बातें हैं, और किसी को भी नहीं बताएंगे, है ना। और दूसरी बात है, बाबा के साथ शेयर क्यों करना है? छोटी छोटी बातें, दिल की बातें बाबा के साथ क्यों शेयर करना है? इंसानों के साथ क्यों नहीं शेयर करना है? क्योंकि कोई भी इंसान के पास जाकर के बोलेंगे ये समस्या हो रही है मेरे जीवन में, वो शायद जजमेंट करेंगे, जज हो जाएगा कि ये इतनी सी बात है, इतना कुछ करने की क्या जरूरत। अपने ही सोच के आधार से पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, और जो चीज मैं जो फील कर रही हूं इस समय, तो वो उसी एग्जैक्टली उस रीति से शायद वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रहा है, क्या मेरे अंदर भावनाएं हैं, वो व्यक्ति शायद नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो भी सीमित है ना, उसकी बुद्धि भी सीमित है। तो वो केवल वर्तमान को देख रहा है, और वर्तमान में भी केवल ऊपर ऊपर से देख रहा है, गहराई से उसको समझ में आ नहीं रहा है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, उसको डिटेल में उसको समझ में नहीं आ रहा है, और वो अपने ही दृष्टिकोण से देखेगा। तो बाबा ही एक व्यक्ति है जो आदि मध्य अंत बाबा को समझ है, जो मुझे भी पता नहीं है मेरा पास्ट क्या है, बाबा को पता है ना। बाबा को हर आत्मा का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता है, जो मुझे भी पता नहीं अपना, है ना। जब बाबा के पास जाकर के हर छोटी छोटी बातें मैं शेयर करूंगी, बाबा आज ये हुआ वो हुआ, तो फिर बाबा बैठ करके सुनेंगे जरूर, और उसके लिए समाधान भी जरूर देंगे। इसीलिए इंसानों को फ्रेंड नहीं बनाना। अभी संगम युग में इंसानों को फ्रेंड बनाने से क्या होगा? टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि फ्रेंड को पालने में भी तो टाइम जाएगा। चलो फ्रेंडशिप के नाते मुझे उसको मदद करनी पड़ेगी, मदद कर लीजिए, कोई बात नहीं। उसके साथ दिल रखने के लिए मुझे पार्टी में जाना पड़ेगा, दिल रखने के लिए वो काम करना पड़ेगा जो श्रीमत के अनुसार है ही नहीं बातें। तो वो इंसानों को फ्रेंड्स के रूप में पालने में बहुत नुकसान है हमारा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे खुदा दोस्त बना लो हर बातें। अब ये नहीं सोचना कि बाबा तो इतना सर्वशक्तिमान है, मैं तेरी इतनी सी कितने सारे पाप कर्म किए हुए बहुत साधारण आत्मा हूं मैं, और क्या मेरी छोटी छोटी बातें बैठ करके बाबा सुनेगा? क्या कहेंगे आप? सुनेंगे बाबा? सुनेंगे? सुनते हैं? अनुभव है आप सबको? हाँ है ना। बाबा तो यही कहते हैं मैं तो बैठा हूं ना, मुझे यूज करो। बाबा तो कई लोग कहते हैं क्या तुम, आपके बाबा आपके लिए फ्री बैठा है? क्या कहेंगे आप? हाँ मेरे लिए मेरा बाबा फ्री बैठा हुआ है ना। तो इतनी इज्जत की बात है, इतने गर्व की बात है। भगवान दूसरे लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए भगवान है, और वो लोग सोचते हैं भगवान तक जाना, भगवान को पहचानना, भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कहते हैं भगवान तो हमारा खुदा दोस्त है, हमारे साथ है, हम हर वक्त हर चीज मैं बाबा के साथ शेयर करती हूँ। तो इतना हमारा संबंध, इतना क्लोज संबंध है बाबा के साथ, है ना। केवल सुबह योग करने वाले फ्रेंडशिप नहीं है, केवल अमृत वेला और मुरली क्लास तक नहीं है हमारा संबंध सीमित। दिन भर 2400 घंटे बाबा के साथ हम वो अनुभव करें, है ना। तो वो फ्रेंडशिप निभाए हमेशा, लेन देन जब ना निरंतर लेन देन करते रहेंगे, वो खुशी की अनुभूति हम करते रहेंगे। और नेक्स्ट संबंध है साजन और सजनी का संबंध। इसमें कौन साजन कौन सजनी? हाँ, शिव बाबा साजन है, आत्मा सजनी है। ये हो सकता है कि मैं साजन और बाबा सजनी? हो सकता है। भाई क्या कहेंगे? बाबा आपकी सजनी हो सकते हैं? नहीं, तो आप तो भाई हो, आप सजनी कैसे बन सकते हैं? आत्मा, शरीर भान का प्रेम नहीं है ना, ये तो आत्मा का प्यार है। तो आत्मा सजनी है, बाबा हमेशा साजन है ना। हमें बाबा को याद करने की जरूरत है, बाबा को कोई जरूरत नहीं हमारे यहां हमको याद करने की, है ना। बाबा भले वो प्यार देते हैं, लेकिन बैठ करके एक एक को याद करें बाबा को जरूरी नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे हमें जरूरत है ना बाबा की, बाबा को भी जरूरत है हमारी, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हमारे द्वारा ही कराएंगे, तो हमारी भी जरूरत है बाबा को, लेकिन उनसे ज्यादा हमें जरूरत है बाबा की। तो इसीलिए बाबा हमारा साजन है, मैं आत्मा बाबा की सजनी। और वो प्यार की अनुभूति, इस संबंध से हमें प्यार की अनुभूति होती है। यह ऐसा संबंध है जो बहुत ही गहरा है, बहुत ही डीप है, जो बाबा के साथ एकदम कंबाइंड स्वरूप का अनुभव हम करें। जो बाबा में जो भी प्यार है, शक्तियां हैं, गुण है, मुझ आत्मा में वो आ रही है, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव हम इस संबंध के द्वारा हम कर सकते हैं। साजन और सजनी, बाबा शिव और मैं शक्ति, शिव शक्ति की अनुभूति, है ना। शिव शक्तियों के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा अकेले क्या करेंगे शक्तियों के बिना? भाई भी शक्तियां है ना। तो आत्माओं के बिना, बाबा के बच्चों के बिना, शक्तियों के बिना शिव कुछ नहीं कर सकते। हमारे द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना बाबा करेंगे। और ये भी बाबा कहते हैं कि आपको ही मैं संपूर्ण बना करके ले जाऊंगा, कोई और लोगों को मैं नहीं ले आऊंगा, आपको ही मार पीट करके प्यार पुचका जो भी हो सब कुछ मैं ट्राई करके आपको ही संपूर्ण बना करके मैं ले जाऊंगा। इतना अथॉरिटी, इतना अधिकार बाबा हमारे ऊपर रखते हैं, है ना। तो उसकी भी खुशी है, बाबा हमारे ऊपर इतना अधिकार रखते हैं और हम भी वो अनुभव करें। शिव शक्तियों के बिना कुछ नहीं कर सकते और शक्तियां शिव के बिना, उनका अस्तित्व कुछ है ही नहीं। आपके जीवन से शिव को निकाल दे क्या होगा, क्या होगा? कुछ रहा ही नहीं ना, कुछ रहा ही नहीं है। शिव के कारण से हम हैं, है ना, अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए वो अनुभव, शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप का अनुभव हम जरूर करें। और लास्ट संबंध है, सातवां संबंध, जो बाबा को हम बच्चा बनाएं, है ना, संतान। हम बाबा के माता पिता और बाबा हमारे संतान, इस संबंध से आनंद की अनुभूति। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो कितने आनंद की अनुभूति होती है ना, पूरा ऐसे एक परमानंद की अनुभूति बाबा को बच्चा बनाने से वो अनुभव होगा। क्योंकि यहां देने की भावना, बच्चे से लेने की भावना नहीं है, बच्चे को देने की भावना जागृत होगा। कहां देना, क्या देना है बाबा को? बाबा हमारा बच्चा है तो बाबा को क्या देंगे? किसको देंगे? बाबा तो अभोक्ता है, शिव बाबा तो अभोक्ता है, तो बाबा तो कुछ लेता नहीं है। जो भी देते हैं वो हम अपने भाग्य बनाते हैं, चाहे तन मन धन श्वास संबंध संपर्क, जो भी हम दे रहे हैं, समय श्वास जो भी हम दे रहे हैं, अपना ही भाग्य हम बना रहे हैं। और एक देते हैं 100 गुना उसको बढ़ा करके बाबा हमें वापस दे देते हैं, है ना। तो जब तक हम देंगे नहीं तो बाबा उसको बढ़ा करके वापस दे भी नहीं सकता, है ना। हम एक नहीं देंगे तो वो 100 कैसे बनाएंगे? हम कहें कि बाबा आप ही देते रहो, आप ही देते रहो, मैं नहीं दूंगी, मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही देते रहो, तो हम सिर्फ लेने की भावना रखेंगे और देंगे ही नहीं बाबा को कुछ, और वो भाग्य हमारा मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। तो इसीलिए देने की भावना रखने की जरूरत है। और बाबा ने ये भी बताया, जब देंगे तब देवता बनेंगे, देंगे ही नहीं तो देवता नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा मेरा बच्चा यज्ञ, बाबा का परिवार मेरा परिवार, है ना। तो इसीलिए जो भी सेवा हम करते जाएंगे बाबा के नाम से, वो हमारा भाग्य बढ़ता जाएगा और आनंद की अनुभूति होती जाएगी, है ना। इन सर्व संबंधों की अनुभूति करते चले और आत्मा सातों ही गुणों को अनुभव करते चलेगी। तो अभी हम अभी थोड़ा 10-15 मिनट ब्रेक रहेगा, योग तो चलता रहेगा, लेकिन 6:30 से 7:30 बजे यहाँ पूरी तरह शक्तिशाली योग हम करेंगे। उस 1 घंटे में आपको करना क्या है, होमवर्क। तो 1 घंटे में 60 मिनट से 10-10 मिनट का स्लॉट बनाएं, 10-10 मिनट का स्लॉट अगर बनाते हैं तो 6 संबंध हम अनुभव कर सकते हैं। तो कोई भी एक संबंध छूट जाएगा, या फिर 7 ही संबंधों का अनुभव करना है तो 5-5 मिनट या 7-7 मिनट आप वो ऐसा एक करके फिर सर्व संबंधों की अनुभूति जरूर करें। और अब तक जो संबंध अनुभव किया ही नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे भले, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी तक जो संबंध अनुभव किया है उसको छोड़ करके जो संबंध अनुभव किया ही नहीं है अभी तक, उस संबंध को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठ करके इस क्लास को पूर्ण करें।